أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اللہ ہم آپ سے حق کی سمجھ مانگتے ہیں کہ جیسا کہ وہ واقعی ہے، کہ آپ ہمیں حق دکھلا دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اور ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دکھلا دیجئے باطل، جھوٹ، فریب، ہمیں باطل دکھلا دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. تو اس دعا کے ساتھ، جو کہ نبوی دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، جو کہ حقوق والدین سے متعلق ہے، اور حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر بالکل آخر میں نقل فرمایا ہے، یا لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے. نقل تو کہیں اور سے نقل کرنے کو کہتے ہیں نا، لیکن انہوں نے یہاں پر اس کو تالیف فرمایا ہے، کمپائل فرمایا ہے، لکھا ہے. اور کیوں لکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگزیکٹلی ان کے ذہن میں کیا اس کی وجہ بن رہی تھی، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ اس کتاب کے، سوری، اس ٹاپک کے بعد جو ٹاپک ہے اس کو دیکھ کر کے اور بھی زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد جو ٹاپک ہے نا وہ ہے کتاب الوصیہ والمیراث. کتاب الوصیہ والمیراث یعنی وصیت اور میراث کا جو تقسیم کا جو ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سب سے آخر میں رکھا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ حقوق والدین کو سب سے، یعنی سیکنڈ لاسٹ پوزیشن کے اوپر رکھا. قدرتاً پچھلی ہی کلاس کے اندر، جو کہ بنی اسرائیل سورت کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے پیر کے دن، تو اس کے اندر بھی ہم نے اسی طرح کی ایک بات کری تھی، ٹھیک ہے. حکیم، اللہ رب العزت سب سے بڑے حکیم ہیں، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اللہ کے مقابلے میں تو بہت ہی چھوٹے حکیم ہیں، لیکن ان کو بھی حکمت کی صفت کے ساتھ ہی متصف فرمایا، نہیں اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا نا. تو الحکیم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو بالکل آخری موضوع رکھا وہ کون سا موضوع تھا؟ خناس سے متعلق. خناس سے متعلق ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یعنی انسانوں میں جو خناس ہوتے ہیں نا، رائٹ، انسانوں میں جو خناس ہوتے ہیں. جن والے خناس کا ذکر بھی اس سے پہلے آ گیا، لیکن بالکل آخر میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ ون ناس، انسانوں میں جو خناس ہوتے ہیں، یعنی وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں، ہمارا کام خراب کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بڑوں کے خلاف، یا اپنے سارے بڑوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، یا رسول اللہ کے خلاف، یا اپنے مشائخ کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف، رائٹ، بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف، ٹھیک ہے نا، تو اپنے بڑوں کے خلاف اکسانے والے جو انسان ہوتے ہیں، اس کے اوپر الحکیم نے اپنی کتاب کا اختتام کیا. تو کتنی اہم چیز یہ ہوگی نا، معمولی چیز تو نہیں ہوگی نا یہ. تو اسی طریقے سے چھوٹے سے حکیم اللہ کے مقابلے میں مولانا حکیم الامت، ٹھیک ہے نا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنی کتاب کا اختتام، جو کہ بحشی زیور ایک بڑی زبردست قسم کی انسائیکلوپیڈیا لیول کی کتاب ہے نا، تو اس میں سب سے آخر میں کتاب الوصیہ والمیراث رکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، وصیت کرنا، میراث کی تقسیم، کیونکہ ابا حضور تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، رائٹ، اب ابا حضور کا تو ڈنڈا سر سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ موجود ہوتے تو اپنے بچوں کو तकसीम करते, बेटी को भी हक देते, बेटे को भी सही हक देते, बीवी को भी जितना बनता है उतना हक देते। अब्बा हुजूर तो दुनिया से रवाना हो गए, अब तो जो जिसका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर। राइट, हमारे हजरत ये पढ़ते हैं अक्सर अपने बयानात में, पढ़ते थे पहले। तो अब जो है ना, फिर जुल्म शुरू हो जाता है, जुल्म शुरू हो जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माँ की लाठी तो माँ की भैंस। राइट, फिर वो अपनी औलाद को कुछ नहीं देती, और अगर बड़े भाई की लाठी तो बड़े भाई की भैंस, वो किसी को कुछ नहीं देता। ठीक है ना, भाइयों की लाठी तो उनकी भैंस, वो बहनों को कुछ नहीं देते। ठीक है ना, तो ये मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा मसला है। तो हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का इख्तिताम किस पर किया, किताबुल वसीया वल मीरास। ठीक है ना, उससे पहले सेकंड लास्ट वो क्या है, हुकूकुल वालिदैन। तो क्या इससे क्या समझ में आता है कि हुकूकुल वालिदैन जो मसला है ना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। बेशक वसीयत और मीरास वाले मसले जितना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसके बराबर बराबर ही सेकंड लास्ट उसकी तो दर्जा आता है हमारे मुआशरे के अंदर। तो इसको बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है हुकूकुल वालिदैन के, और दुनियादार खाली अब्यूज नहीं करते बल्कि दीनदार भी बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं। और उसके लिए किस चीज को इस्तेमाल करते हैं दीनदार लोग, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को, कुरान मजीद की आयात को, इसी को इस्तेमाल करके ही इसको अब्यूज करते हैं और गलत मानों में लेके जाते हैं। तो हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फिर बहुत सारी अहादीस ऐसी जो है वो यहाँ पे बयान फरमाई कि जिनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ही वालिदैन हैं और वालिदैन ही यानी सब कुछ है। ठीक है, तो उसको फिर उसकी जो है ना वो डाइसेक्शन करिए, इस पूरे के पूरे मसले की और इन हदीसों के अल्फाज की डाइसेक्शन करिए, उसकी सर्जरी करिए, और उसके अंदर से फिर जो है ना वो तफसीलात निकाल निकाल करके समझाई है कि ऐसा नहीं है जैसे कि मुआशरे के अंदर जो है ना वो सोच को रिवाज दे दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब इस सिलसिले की जो आखिरी हदीस है वो हम पढ़ रहे हैं, इस बल्कि हदीस तो ये नहीं है, ये तो फिर जो पिछली अहदीस थी ना उनमें से जो जो मसाइल डिराइव किए गए, तो उनमें से दूसरा मसला है। पहला मसला जो है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अब मसला नंबर 2 पेज नंबर 316 के ऊपर, 316 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर भी हुआ हुआ है। तो मसला नंबर 2, कौन सी वाली हदीस में से डिराइव किया हुआ, कंजुल उम्माल की हदीस जिसमें है कि तुम्हारी औलाद अल्लाह ताला का अतिया है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं लड़कियां देते हैं और जिसको चाहते हैं लड़के देते हैं, बस वो औलाद और उनका माल तुम्हारे लिए है जब तुम्हें जरूरत हो। है, तो अब जब तुम्हें जरूरत हो, जो ये जुमला है ना, ठीक है, तो इस जुमले को दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है, इसी एक जुमले को दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है, अगर आप में से कोई बताना चाहे। ये जो जुमला है ना कि उसके यानी जब तुम्हें जरूरत हो, ठीक है, इस जुमले को जब तुम्हें जरूरत हो, इसको पढ़ने के दो अंदाज क्या है, कोई आप में से बताएगा, इसको पढ़ने के दो अंदाज किया है। ठीक है, इन दो तरीकों से जुमले को पढ़ा जा सकता है। खामखा में आपके साथ जो है ना वो खिलवाड़ करने के लिए ये बातें नहीं कर रहे होते ना, ऐसी बस फन करने के लिए और हंसी मजाक करने के लिए, ये बातें नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, इसी मकसद से कर रहा हूँ। ठीक है, मकसद क्या है कि आप जो है ना वो जुमलों को ऐसे डाइसेक्ट करने की आदी बन जाएं। ठीक है, आप भी इसी तरीके से डाइसेक्ट किया करें, और मैं भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बस दिल में भी ये बात आई है तो आपके सामने कर रहा हूँ। अब कहाँ से आई है, अल्लाह ताला बेहतर है कि अल्लाह ताला की तरफ से आई हो, वरना तो शैतान की तरफ से आई होगी, तो फिर तो मेरा भी काम खराब होगा, आपका भी काम खराब होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं अल्लाह की तरफ से ये बात आई है कि आपसे मैं ये पूछूं कि इस जुमले को दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है, वो कैसे। ठीक है, बताएं कौन से दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है? एक तो ये कि इन्होंने लिखा, डायरेक्ट मैसेज में लिखा है तो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब कोई जायज और जरूरी जरूरत हो, जायज और जरूरी जरूरत हो, और एक ये है कि जब जो दिल चाहे जा या बेजा जरूरत हो। ठीक है, जब भी तुम्हें जरूरत हो। हाँ, ये ज्यादा इन्होंने जरा ज्यादा आसान तरीके से बयान कर दिया है। ठीक है, एक तरीका ये है कि इसके अंदर जो लफ्ज भी है ना, भी, उसको महजूफ माना जाए और उसके मुताबिक इस जुमले को समझा जाए कि जब भी तुम्हें जरूरत हो ना, बस तुम ले लो, जब भी तुम्हें जरूरत हो। ठीक है ना, और दूसरा तरीका इसको पढ़ने का क्या है कि जब तुम्हें जरूरत हो, राइट, जब तुम्हें जरूरत हो उस वक्त तुम उनके मान में से ले लो। ठीक है ना, ये नहीं कि जब तुम्हें जी चाहे, जब तुम्हारा जी चाहे, जब तुम्हारा मूड हो, जब तुम्हारा तुम्हारी ख्वाहिश हो तो उनके मान में से ले लो। नहीं, बल्कि जब भी तुम्हें जरूरत हो तब तुम इनमें उनके मान में से ले लो। यह है दूसरा तरीका इसको पढ़ने का। और पहला तरीका क्या था? जब भी तुम्हें जरूरत हो, है ना, यानी जरूरत को आपने छोटा कर दिया और जब को तुम आपने बड़ा कर दिया। ठीक है ना, तो इससे क्या मफहूम समझ में आता है कि जस्ट यू नो वॉट एवर, वेन एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट, ये मफहूम समझ में आता है। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो फिर जरूरत इज द की वर्ड हियर, जरूरत इज द की वर्ड। अब जरूरत इज द की वर्ड तो फिर नाउ यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज जरूरत, जरूरत क्या चीज होती है। इसी वजह से पिछली क्लास में कोई हमने 15-20 मिनट जो है ना, वो सिर्फ लफ्ज जरूरत के ऊपर लगाए थे, ये जरूरत होता होती क्या चीज है। ठीक है ना, हर एक की अलग जरूरत होती है और ये होता है वो, मैंने बहुत सारी बातें करेंगी जरूरत के बारे में, क्योंकि असल चीज ही जरूरत को डिफाइन करना है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो फिर जरूरत को डिफाइन करने की जरूरत ही कोई नहीं, फिर उसके बाद जरूरत को डिफाइन करने की जरूरत ही कोई नहीं, फिर तो जब भी, वेन एवर यू विश। ठीक है ना, अल्लाह जदाए खैर अता फरमाए जो खवातीन तकरार करती हैं इस क्लास की, क्योंकि तकरार किए बगैर जो है ना ये बातें याद रहना तो दूर की बात, समझ में ही नहीं आने वाली है वाली बातें। ठीक है ना, सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, तकरार करेंगी तो फिर बात समझ में आएगी, और फिर अगर और तकरार करेंगी तो फिर याद भी रहेंगी। ठीक है, क्या लिखा आपने कि यानी औलाद जो माँ बाप की कमाई कही गई है जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें, बिला जरूरत नहीं करें। ठीक है ना, माँ बाप औलाद की कमाई है, माँ बाप औलाद की, सॉरी सॉरी, औलाद माँ बाप की कमाई है, औलाद माँ बाप की क्या नहीं है, बंदी नहीं है, राइट, बंदा और बंदी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ना कमाई के अंदर फिर उसूल होते हैं कि आप इस कमाई को कैसे खर्च कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर आप जॉब करती हैं अगर, राइट, कहीं भी जॉब, जैसी भी जॉब, ऑनलाइन करें, घर से करें, बाहर से करें, जैसे भी करें, कोई जॉब करती हैं तो आप कमाई लेकर के आती हैं, जॉब के ऊपर आपको कमाई मिलती है ना। ठीक है ना, अब उस कमाई को आप जैसे चाहें खर्च करें, जैसे चाहे खर्च करें, हैं, शराब खरीद करके लाएं उस कमाई से, उस कमाई से जो है वो किसी को जहर देने के लिए जहर खरीद करके ले आए, राइट, उस कमाई से जो है वो आप फिल्में खरीद करके ले आए, म्यूजिक खरीद करके ले आए, भाई मेरी कमाई है, मैं जो चाहूँ उसके साथ करूं, क्या ख्याल है फिर, राइट, मेरी कमाई है, मैं जो चाहूं उसके साथ करूं, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है ऑफकोर्स। ठीक है ना, तो कमाई जो है ना, ये इसका कमाई का मतलब ये नहीं होता कि अब आप जो चाहें करें उसके साथ। इस दुनिया के अंदर कमाई बेशक आपकी है, लेकिन रूल्स हैव टू बी फॉलोड, रूल्स हैव टू बी फॉलोड इवन इन योर ओन कमाई। ठीक है, इंशाल्लाह अब आपको और समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद है कि आ गई होगी। अच्छा, मसला नंबर दो फिर इस हदीस से जो ड्राइव किया था वो ये है कि जो काम शरीयत की रूह से नाजायज हो, शरीयत क्या है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का बनाया हुआ कानून, इसको शरीयत कहते हैं, अल्लाह के अहकामात, ठीक है ना, शरीयत ये नहीं है कि कौन सी वाली तारीख को कितना चिरागा करना है और कौन सी वाली तारीख को जो है ना वो आपने कौन सा नफली रोजा रखना है और कौन सा जो है वो आपने कपड़े पहनने हैं, किस किस तारीख को अच्छे कपड़े पहनने, किस तारीख को अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, ये शरीयत नहीं है। राइट, शरीयत अल्लाह के अहकामात का नाम है। जैसे हजरत हकीम उम्मत ने इस पूरे मौजू को शुरू किया, अन्नल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा। ठीक है, तो इस तरह के अहकामात जो है ना अल्लाह ताला के, तो शरीयत की रूह से जो नाजायज हो और माँ बाप उसका हुक्म दें, मसलन वो किसी बच्चे का हुक्म दें, जाहिलाना रसूमात पर मजबूर करें, जैसे शादी ब्याह के अंदर जाहिलाना रसूमात होती हैं, ठीक है ना, लिफाफों वाली रसूमात और मुंह दिखाई वाली रसूमात और जूता छुपाई वाली रसूमात और उबटन वाली रसूमात और मेहंदी वाली रसूमात, और है उसको भी खुश करना है, इसको भी खुश, सवाए अल्लाह के सबको खुश करना है। ठीक है ना, ये तो शादी ब्याह का मौका है, ये कोई फौतगी का मौका कोई थोड़ी है कि इसके अंदर भी पर्दा कर रही हो। ये फौतगी का मौका कोई थोड़ी है कि इसके अंदर भी तुम पर्दा कर रही हो, इसके अंदर भी मौसीकी नहीं चला रही हो, है इसमें तो हल्की फुल्की मौसीकी तो होनी चाहिए ना भाई, शादी ब्याह का मौका है आखिर को, सही है ना। तो अगर वो जाहिलाना रसूमात पर मजबूर करें तो इसमें उनकी अताअत जायज नहीं है। ठीक है, जो काम शरअन, अच्छा अब दूसरी बात हो रही है, ये पहली बात ठीक है ना हो गई, अब दूसरी बात, जो काम शरअन वाजिब नहीं है, वाजिब कौन सी चीज होती है शरीयत के अंदर, के एक तो बड़ा आसान सा इसकी डेफिनेशन है ना कि वाजिब वो होता है कि जो नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा। ये वाजिब की दूसरी तारीफ बताएं, ये पहली तारीफ तो है, दूसरी तारीफ बताएं जो कि इस क्लास के अंदर आपको बताई गई थी, वाजिब की दूसरी तारीफ क्या है? जी क्या है दूसरी तारीफ वाजिब की? पहली तारीफ तो फिका की किताबों में आपको मिल जाती है, ठीक है ना, दूसरी तारीफ आपको उमूमन फिका की किताबों में नहीं मिलेगी, वो आपको दूसरी किताबों में मिलेगी दूसरी तारीफ, ठीक है ना, वो कौन सी है दूसरी तारीफ वाजिब की? जी क्या है दूसरी तारीफ? बताएंगे तो आगे चलेंगे वरना इधर ही खड़े रहेंगे। क्या है दूसरी तारीफ वाजिब की शरीयत में, जो चीज वाजिब होती है? अच्छा, अगर क्लास में नहीं बताया होगा ना तो शायद इतना मैं इंतजार न करता आपके जवाब का, वरना सवाल किए जाते हैं ताकि जरा आप अपने जोर जहन पे जोर दें, ठीक है ना, और खुद से जो है वो जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है, जहन पे जोर देंगी तो फिर बात ज्यादा समझ में भी आ जाती है, याद भी रह जाती है। लेकिन कभी कोई बात बताई गई हो तो फिर वो अपनी तरफ से फिर उसका जवाब तलाश करने के लिए नहीं आपसे सवाल किया जाता, बल्कि जस्ट टू नो कि आपने कितनी पे अटेंशन करी थी, कितनी गौर से बात सुनी थी, या कितना आपने उसको नोट किया था अपने नोट्स के अंदर, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी दिमाग में कितनी आपने नोट करी थी और सेकेंडरी मेमोरी यानी नोटबुक के ऊपर आपने उसको कितना नोट किया था, ये चेक करना मकसूद होता है फिर। ठीक है, तो वाजिब की दूसरी तारीफ क्या है, और उसकी हिंट भी आपको मैंने दे दिया है कि फिका की किताबों में ये तारीफ आपको नहीं मिलेगी। यानी किसी एक को भी नहीं पता, याद नहीं है किसी एक को भी, नहीं करेंगे तो पिटाई होगी, तो भाई वो गुनाह तो बात हो गई ना, वो तो पहली तारीफ हो गई, नहीं करेंगे तो गुना मिलेगा, गुना इज इक्वल टू पिटाई, तो ये तो पहली तारीफ हो गई जो आप बता रहे, ठीक है ना, दूसरी तारीफ ये बतानी है कि वाजिब फर्ज के करीब होती है। नहीं, ये कोई तारीफ नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन तो हो गई। वाजिब वो जो नहीं किया जाए तो डिप्रेशन होगा। माशाल्लाह, जबरदस्त जवाब दिया वैसे उन्होंने, लेकिन ये सही पूरा पूरा जवाब नहीं है। अच्छा जवाब है लेकिन पूरा जवाब नहीं है। वाजिब वो, गौर से सुनिए बाकी लोग, वाजिब वो जो नहीं किया जाए तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, डिप्रेशन होगा। ये जवाब जो है वो बेगुबार जवाब नहीं है, लेकिन है ये इन द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी जवाब की बिल्कुल सही है। तो जो किसी ने जवाब दिया है कि वाजिब की तारीफ दीन से आती है, और दीन अल्लाह का बनाया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ, मौलवी साहब और आलिम साहब का समझाया हुआ। ये तो आपने दूसरी बात माशाल्लाह याद दिला दी, लेकिन सवाल से इसका ताल्लुक डायरेक्टली तो नहीं बनता। वाजिब गैर ऐन का मतलब क्या होता है? कि वो गैन होता है, वाजिब गैन होता है, ऐन नहीं होता। क्या मतलब? डिप्रेशन वाली बात को उधर और गौर करें। वाजिब नहीं करेंगे तो सेंस ऑफ मायूसी पैदा होगी। मुअय्यन, मुअय्यन से क्या क्या मतलब है आपका? सेंस ऑफ मायूसी पैदा होगी, और डिप्रेशन को आपने सेंस ऑफ मायूसी से एक्सप्लेन कर दिया। देखें, शरीयत के अंदर यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ उन बातों को हमारे ऊपर वाजिब किया है जो जो क्या है, क्या क्या मान लेना है, क्या नहीं मान लेना है। ठीक है, वालिदैन की बात, ये वाजिब है। आप, लगता है आपके हम बच्चे जो है ना, वो दे आर गिविंग यू अ टफ टाइम है इस वजह से। वालिदैन की बात जो है ना, वो वाजिब है। बैठे हुए साथ तो नहीं बैठे हुए बच्चे। एनीवे, वाजिब हो, वाजिब वो है जो हमारे लिए फायदा मंद है। सिर्फ फायदा मंद नहीं है, फायदामंद तो वो है, फोर्स फायदामंद है जी, जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जरूरत है, अल्लाह ने सिर्फ उसको वाजिब किया है। हमारी जरूरत क्या है? नुकसान से बचना। हमारी क्या जरूरत है? बिल्कुल बेस मिनिमल जरूरत हमारी क्या है? नुकसान से बचना, टू अवॉइड हार्म, टू अवॉइड हार्म। दिस इज आवर जरूरत, दिस इज आवर नीड। बेनिफिट हासिल करना फिर ये उसके बाद आता है, उसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं बेनिफिट को। ठीक है ना, यानी फायदे हासिल करना। वाजिब सिर्फ शरीयत के अंदर वो चीजें हैं जो कि हमारी हमारे लिए जरूरी। क्या चीजें हैं जो हमारी जरूरत है? वो हमारे लिए जरूरी है ना। क्या मतलब? जब वो चीज हम नहीं करेंगे, जब वो चीज हमें नहीं मिलेगी तो हमें नुकसान होगा, तो हमें नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कुछ चीजों को हार्मफुल बनाया है, कुछ चीजों को बेनिफिशियल बनाया है। ठीक है ना, हार्मफुल से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं। देखो, तुम ये वाला काम करो तुम नुकसान से बच जाओगे, तुम ये वाला काम करो तुम नुकसान से बच जाओगे। उन नुकसानों में से एक नुकसान आप लोगों ने लिखा डिप्रेशन या मायूसी, आपने सिर्फ एक नुकसान लिखा है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर, सादा सी मिसाल से, सुअर खाना, ठीक है ना, सुअर नहीं खाना वाजिब है शरीयत के अंदर। और यहाँ पर लफ्ज वाजिब जो है ना, वो फर्ज और वाजिब को इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, तो सुअर नहीं खाना ये शरीयत ने वाजिब क्यों किया है? क्योंकि सुअर खाओगे तुम्हें नुकसान होगा, सुअर खाओगे तुम्हें नुकसान होगा, शराब पियोगे तुम्हें नुकसान, चाहे दुनियावी शक्ल में तुम्हें नजर आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तुम्हें दुनियावी नुकसान भी होगा और तुम्हें आखिरत का नुकसान भी होगा। शरीयत ने सिर्फ उन चीजों को वाजिब किया है कि जो कि हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है ना, करना जरूरी है या ना करना जरूरी है, ठीक है ना, वो वाजिब है। सही है, तो ये ना दीन को देखने का एक एक अलग रुख है। एक तो हो गया ना कि भाई आपकी जो क्या कहते हैं, मुल्क के अंदर आपका जो कानून है, तो वो कानून किसने बनाया है? वो कानून जो है वो चंद पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया है, राइट। अब हमारे लिए फायदा यही है कि हम उस कानून को जो है वो फॉलो करें, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो भाई पुलिस वाले जो है वो हम पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या वो कानून की हर बात जो कि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट वालों ने बनाई है, क्या वो हर बात हमारे लिए जरूरी है? अगर हम नहीं करेंगे तो हमें उससे नुकसान होगा? ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो इंसानों का बनाया हुआ कानून है ना। वो इंसान जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं वो हमारे खालिक तो नहीं है ना, राइट? वो हमारे खालिक तो नहीं है ना, थोड़े बहुत हमारे मालिक जरूर हैं, गवर्नमेंट है, थोड़े बहुत उनके पास मिल्कियत जरूर है, लेकिन वो हमारे खालिक तो नहीं है ना। अल्लाह का जो कानून है ना, ये सिर्फ मालिक ने नहीं बनाया, ये खालिक भी है। वो जिसने बनाया है वो खालिक भी है, वो राजिक भी है, राइट? तो उसके कानून में तो कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि जो कि हमारी जरूरत ना हो, ठीक है ना। हाँ, जिन चीजों की हमारी जरूरत नहीं है लेकिन करने से फायदा होगा, उनको वाजिब कहा ही नहीं शरीयत ने, वो वाजिब है ही नहीं। वो क्या है? वो मुस्तहब है, वो मुस्तहब है। जिनको करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, वो वाजिब नहीं है शरीयत के अंदर, वो मुस्तहब है, ठीक है ना। तो अब ये सारी बहस क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि जो चीज वाजिब नहीं थी, अगर आप उसको वाजिब बना लेंगे अपने लिए, अपनी जहालत की वजह से, अपनी बेवकूफी की वजह से आप उसको वाजिब बना लेंगे, तो भाई वो तो वाजिब थी नहीं, खालिक ने तो उसको वाजिब किया ही नहीं था। आपने उसको वाजिब बना लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है ना, वो आप अगर उसको बतौर वाजिब के करेंगे तो आप, ये भी आपका नुकसान होगा, ये भी आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वालिदैन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यही बात की जा रही है कि जो काम शरण वाजिब नहीं है, ठीक है ना, और ना ही वो नाजायज काम है, यानी जायज है, बल्कि जायज है, ठीक है, चाहे मुस्तहब ही हो। जायज में मुस्तहब का मतलब क्या होता है कि करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो नुकसान नहीं होगा, पिटाई नहीं होगी, गुनाह नहीं मिलेगा, उसको मुस्तहब कहते हैं। और सिर्फ जायज जो कि मुस्तहब नहीं है, वो क्या चीज होती है? करोगे तो नुकसान नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा, करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा, करोगे तो सवाब का तो जरूरी नहीं है कि सवाब मिले तुम्हें, मिल भी सकता है किसी और वजह से तुम्हें, उसको मुबाह कहते हैं, मुबाह, परमिसिबल, मुबाह। करोगे तो सवाब की भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन हो सकता है ना मिले, लेकिन गुना नहीं मिलेगा, पिटाई नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, उसको मुबाह कहते हैं, ठीक है। तो जायज इज अ वेरी वैस्ट वर्ड, इसके अंदर फर्ज भी आ सकता है, इसके अंदर वाजिब भी आ सकता है, इसके अंदर सुन्नत भी आ सकता है, इसके अंदर मुस्ताहब भी आ सकता है, और इसके अंदर मुबाह भी आ सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जायज है, लेकिन फिर फर्ज 70 गुना सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो बहुत पिटाई होगी, ठीक है ना। वाजिब भी क्लोज टू फर्ज ही होता है, सुन्नत के अंदर करोगे तो सवाब मिलेगा, अच्छा खासा सवाब मिलेगा, और अगर आदतन तुमने छोड़ दिया तो उसके ऊपर तुम्हारी पिटाई होगी। मुस्ताहब करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई पिटाई नहीं होगी, और मुबाह बस करोगे तो शायद सवाब मिल जाए, नहीं करोगे तो कोई पिटाई नहीं होगा, ये मुबाह होता है, ठीक है। तो क्या फरमा रहे हैं कि जो काम शरण वाजिब ना हो और ना ही नाजायज काम हो, बल्कि जायज हो, चाहे मुस्तहब ही क्यों ना हो, ठीक है ना, यानी सिर्फ मुबाह नहीं है बल्कि मुस्तहब भी अगर हो ना, और माँ बाप उसके करने या ना करने का हुक्म दें, तो फिर उसमें तफसील है, ठीक है ना। माँ बाप ऐसे किसी काम को जो कि वाजिब नहीं है, जायज काम है, चाहे वो मुबाह के लेवल का जायज हो, चाहे वो मुस्तहब के लेवल का जायज हो, अब माँ बाप जो है वो उसको करने का हुक्म दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, तफसील में जाना होगा, क्या देखना चाहिए कि इस काम की उस शख्स को ऐसी जरूरत है कि इसके बगैर उसको तकलीफ होगी, यानी माँ बाप हुक्म कर रहे हैं, तो अब जो है ना वो अगर जायज काम है, या यानी बल्कि इसको अगर आप लिख लेना तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ये पैराग्राफ समझना जरा मुश्किल काम है इस लैंग्वेज को, ठीक है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो बड़ी आसान उर्दू के अंदर, लेकिन ये एक थोड़ी सी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तरह की का ये जुमला है, ठीक है। तो इस वजह से लिखने अगर इसको तो ज्यादा आसान होगा कि माँ बाप अगर हुक्म दें किसी बात का जो कि मुबाह हो या मुस्तहब हो, जो कि मुबाह हो या मुस्तहब हो, तो फिर उस चीज में गौर करना चाहिए। कि क्या गौर करना चाहिए? नंबर 1, क्या उस शख्स को ऐसी जरूरत है कि उसके बगैर उसको तकलीफ होगी? ठीक है ना, जिस काम का माँ बाप ने हुक्म दिया है, क्या इस हुक्म पे अमल करने की उसको ऐसी जरूरत है कि अगर वो ना करे तो उसके बगैर उसको तकलीफ होगी? मसलन गरीब आदमी है और उसके लिए अपने इलाके में कमाई की कोई सूरत नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, नॉर्दर्न एरियाज में रहता है, पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में भी नॉर्दर्न एरियाज जो है वो पहाड़ों वाले और दरख्तों वाले हैं, दरख्तों की कटाई हो गई, फॉर डिफॉरेस्टाइजेशन हो गई है ना, अब दरख्त वरख्त कोई है ही नहीं वहां पे, तो अब जो है ना ये ऐसे इलाके में रहता है कि जहां पर जो है ना वो अब कमाई के जो जरिए थे वो खत्म हो गए हैं ना, मगर माँ बाप उसको बाहर नहीं जाने देते, कराची नहीं जाने देते कमाई करने के लिए, लाहौर नहीं जाने देते, इस्लामाबाद नहीं जाने देते कमाई करने के लिए, तो ऐसी सूरत में माँ बाप की अताअत जरूरी नहीं है। और अगर इस दर्जे की जरूरत नहीं है तो फिर देखना चाहिए, ठीक है, ऐसी सूरत में माँ बाप की यानी उसके अपने लोकल एरिया के अंदर कमाई की सूरत ही कोई नहीं है, और कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, कमा करके घर में लाना, उस घर की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करना, असबाब को इख्तियार करना, कोशिश करने का मतलब क्या होता है, जो अवेलेबल असबाब है उनको इख्तियार करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अब असबाब खत्म हो गए कमाई के किसी इलाके के अंदर, ठीक है ना, तो माँ बाप कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे कहीं भी, तुम इधर ही रहोगे, तो हुक्म किया है शरीयत का कि ऐसी सूरत में माँ बाप की अदात जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये इसको अंडरलाइन कर लें कि ये हुक्म है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत, और अगर इस दर्जे की जरूरत नहीं है यानी आपके आबाई इलाके के अंदर भी कमाई के असबाब मौजूद हैं, ठीक है ना, तो फिर देखना चाहिए कि इस काम में बीमारी या हलाकत का कोई खतरा है या नहीं है, यानी माँ बाप किसी चीज का आपको हुक्म दे रहे हैं तो उसको मानने में बीमारी या हलाकत का कोई खतरा, ठीक है ना, एक बीमारी खुद भी हलाकत का खतरा हो सकती है, अगर ज्यादा बड़ी बीमारी है तो आपको बीमारी लग जाएगी अगर आपने माँ बाप का हुक्म माना, ठीक है ना, या हलाकत का कोई खतरा मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट कॉजिंग काम जिसमें आपकी हलाकत का खतरा हो, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बहुत ऊंचे पहाड़ से जो है ना वो आपको कोई चीज लेकर के आनी, तो भाई फिसल, अच्छा वो यानी स्लिपरी किस्म का पहाड़ है, लोग उसके ऊपर चढ़ते नहीं है क्योंकि डरने का बहुत ज्यादा उसके अंदर खदशा है, तो अब अगर आपको आपको हुक्म देना है कि नहीं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके जो है ना तुम फलानी चीज लेकर के आओ, तो भाई उसमें फिसलने का बहुत ज्यादा खौफ है, बहुत ज्यादा एहतमाल है, तो इसको कहेंगे हलाकत का खतरा है, ठीक है, तो देखना चाहिए कि बीमारी या हलाकत का कोई खतरा है या नहीं है। नीज ये भी देखना चाहिए कि उस शख्स के इस काम में मशगूल हो जाने से वालदेन की खिदमत का इंतजाम ना होने की वजह से उनको तकलीफ पहुंचने का कभी एहतमाल है या नहीं है, ठीक है ना, अब तक तो सारी बातें वालदेन के खिलाफ जा रही थी ना कि उनकी अताअत ना करो, उनकी अताअत ना करो, ठीक है ना, किन चीजों के अंदर, यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी अताअत के खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन ये जुमला जो है ना वो उनके हक में जा रहा है, ठीक है ना, अब ये है ना थोड़ा वालिदैन के हक में भी बात हो रही है, कि ये भी देखना चाहिए कि इस शख्स के उस काम में मशगूल हो जाने से वालिदैन की खिदमत का इंतजाम ना होने की वजह से उनको तकलीफ पहुंचने का कभी एहतमाल है या नहीं है, ठीक है, यानी गरीब आदमी है, अपने इलाके में कमाई की कोई सूरत नहीं है, ठीक है, अब उसको जो है ना वो कमाई के लिए किसी दूसरे इलाके में जाना होगा, चाहे उसको शिफ्ट करना पड़े, मूव करना पड़े दूसरे इलाके में, चाहे उसको रोजाना जो है ना वो कम्यूट करना पड़े, लंबा लंबा जो है वो सफर करके वहां पे जाए, रोजी कमाए, फिर उसके बाद वापस आए अपने घर पे, इसको कम्यूट करना भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अप डाउन करना भी कहते हैं, रोजाना अप डाउन जॉब के लिए, तो अगर इस तरह से वो करेगा तो इससे क्या माँ बाप को तकलीफ पहुंचने का खतरा है? कौन सी वाली तकलीफ ये बता दें जरा, तकलीफ 2 तरह की होती है, कौन सी वाली तकलीफ पहुंचने का खतरा है? एक इंसान को दो तरह की तकलीफ होती है। एक तकलीफ होती है जिस्मानी तकलीफ, हाँ, और दूसरी तकलीफ कौन सी होती है? मेंटली, सही फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक है ना, जहनी तकलीफ, ठीक है ना, इमोशनल तकलीफ भी उसको कह सकते हैं, जहनी तकलीफ और जिस्मानी तकलीफ। रूहानी तकलीफ की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे यो रूहानी तकलीफ इज नॉट रेलिवेंट हियर, क्योंकि रूहानी तकलीफ का मतलब ये होता है गुनाह करना, उसकी वजह से जो पिटाई होगी वो रूहानी तकलीफ होती है, गुनाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुनाह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फिजिकल तकलीफ या मेंटल तकलीफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि वालदैन को तकलीफ पहुंचने का कभी एहतमाल है, तो यहाँ पे कौन सी वाली तकलीफ की बात हो रही है? फिजिकल, जिस्मानी तकलीफ की बात हो रही है, इमोशनल तकलीफ की बात नहीं हो रही। इमोशनल तकलीफ जो बूढ़े वालदैन होते हैं ना, उनको कैसे होती है बताएं जरा, ये बड़ा अहम टॉपिक है ये, आपने अक्सर को शायद अभी कभी तजुर्बा नहीं हुआ ना इस बात का, तो आपको नहीं समझ में आएगी ये बात, इस वजह से अभी क्लास में समझ लें। इमोशनल तकलीफ, ठीक है, ये होती है जब उनकी बात ना मानी जाए, हाँ, जब उनकी बात ना मानी जाए तो उनको इमोशनल तकलीफ होती है, ठीक है ना। अकेलापन, फीलिंग अलोन, ठीक है, ये होती है इमोशनल तकलीफ, तन्हाई की वजह से इमोशनल तकलीफ होती है, जहनी तकलीफ होती है, ठीक है। तो औलाद क्या करे अब उसके लिए? उनकी बात ना मानी जाए, तो भाई अल्लाह की नाफरमानी अगर नहीं है तो फिर तो उनकी बात मानी जाए, ठीक है ना। और खाली अल्लाह की नाफरमानी नहीं, बल्कि ये भी, ये जो है ना कि वो जिसमें के औलाद को जो है वो तकलीफ, या औलाद के बीवी बच्चों को तकलीफ है ना, उसमें भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, वो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ही की एक जुज होती है। तो बात मानने का तो मसला हम क्लियर कर चुके हैं पहले, अकेलेपन की अभी बात हो रही है, अकेलापन, तन्हाई, ठीक है ना। अब उनकी जो इमोशनल तकलीफ है, तो अब उसके लिए औलाद क्या करे? उनको वक्त देना, उनको वक्त देना। तो वक्त कितना होता है औलाद के पास? दिलासा देना, दिलासा देने से तनाई दूर नहीं होती, ठीक है ना, वो भी उनको भी पता होता है कि मुझे जो है ना वो धोखे दे रहा है, दिलासा दे रहा है, दिलासा देने से तनाई दूर नहीं होती, क्योंकि दिलासा जो है ना ये 5 मिनट में निबड़ जाता है, दिलासा देना 5-10 मिनट की बात होती है, दिलासा दे दिया आपने, फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 24, 60 × 24 जितना भी इसका रिजल्ट बनता है, तो उसमें से आपने 15 मिनट जो है उनको दिलासा दे दिया, तो फिर बाकी जो हंड्रेड्स ऑफ मिनट्स बचते हैं उसमें फिर क्या करेंगे? वक्त देना, तो आप फिर कैसे करेंगे? आपकी जो जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं, चाहे माँ बाप के लिए भी कमा के लाना हो, तो आप कैसे करेंगे वो कमाई, ठीक है ना। बीवी को कैसे टाइम देंगे, बच्चों को कैसे टाइम देंगे, घर की जिम्मेदारियों को कैसे टाइम देंगे, जो आप कमाने के लिए जॉब करते हैं उस जॉब को आप कैसे टाइम देंगे, ठीक है ना। तो वालिदैन की जो तन्हाई है ना, इमोशनल जो उनकी नीड है ना, इस इमोशनल नीड को पूरा करने का ये तरीका नहीं है। 1 मिनट। आप ज्यादा नहीं कर सकते कुछ, ठीक है ना, इसमें आप उनको वक्त नहीं दे सकते सिवाय थोड़े वक्त के, उससे ज्यादा वक्त दे नहीं सकते। ये इमोशनल तकलीफ से बचाने का मतलब क्या होता है? वक्त देना नहीं होता इसका मतलब, क्योंकि वक्त इज समथिंग जो कि आप दे नहीं सकते, आपके पास है नहीं ये वक्त। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर जो होती है ना अपनी जिंदगी की जरूरियात आपको पूरी करनी होती है, अपने फराइज को पूरा करना होता है, वाजिबात को पूरा करना होता है, और तकाजे होते हैं उनको पूरा करना होता है, वक्त आप नहीं दे सकते सिवाय बहुत थोड़े वक्त के। इमोशनल तकलीफ से बचाने का तरीका ये होता है, ये जो मखमसा है ना वक्त देना, इस मखमसे को खत्म करना चाहता हूं। इमोशनल तकलीफ से बचाने का वक्त का तरीका ये होता है कि आप उनके साथ बदजुबानी ना करें, आप उनके साथ बदजुबानी ना करें, ठीक है ना। आप उनको जो है ना वो ताने ना दें कि क्या किया है आपने मेरे लिए, और जो किया है कौन सी बड़ी बात करी है, सभी करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो औलाद कहती है ना अपने माँ बाप को, ये होता है इमोशनल तकलीफ पहुंचाना। ये नाजायज है, हराम है, ठीक है ना, इस किस्म की बातें कहना। वक्त देना आप जितना दे सकते हैं उतना जरूर दें, लेकिन आप उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप उनके सामने खड़े होकर के जो है ना वो तमाशे नहीं कर सकते, आप उनको एंटरटेन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लिटिल टाइम, जिसको दिलासा देने के लिए 15-20 मिनट का टाइम हो गया, या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का टाइम हो गया कभी, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि औलाद जो है वो डिज्नी वर्ल्ड चली जा रही है भागे भागे जाकर के ना, और माँ बाप को जो है वो टाइम नहीं दे रही। भाई औलाद भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, ठीक है ना, वो टाइम नहीं दे सकती। तो बात को समझें कि इमोशनल तकलीफ जो है ना वो वालदैन को ना देने का मतलब ये होता है आप उनके साथ बदतमीजी ना करें, आप उनको जो है वो ताने ना दें, आप उनको उनकी गलतियां याद ना दिलाएं, ठीक है ना। और आप इस किस्म की बातें ना करें कि आपने मुझे क्या दिया, सभी करते हैं, ये तो सबकी जिम्मेदारी होती है, सारे माँ बाप जो है अपने औलाद के लिए करते हैं, आपने कौन सी बड़ी बात कर ली, इस किस्म की बेहुदा बातें ना करें अपने वालदैन से, ठीक है। जो वक्त का मामला है ना वालदैन का, ये वालदैन का अपना प्रॉब्लम है। दे हैव ए कनेक्शन विद अल्लाह, अल्लाह है, ठीक है ना, अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह का दीन भी है, अल्लाह की बातें भी हैं, ठीक है ना। ये बात हम बहुत सालों पहले कर चुके हैं और कई दफा कर चुके हैं, ठीक है ना, कि इंसान जो है ना वो जवानी में जब अल्लाह ताला के साथ जुड़ के रहता है ना, अल्लाह ताला के साथ उसका एक ताल्लुक बनता है ना, तो फिर ये ताल्लुक उसको बुढ़ापे में काम आता है। ये जो हमारा है ना, ये जो एक लफ्ज है ना हमारा, माफ कीजिएगा अगली क्लास से टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ही अहम चीज है ये, कि सोशलाइज करना, सोशलाइज करना, ये जो आप में से भी अक्सर की ये बीमारी है, राइट, कि जी सोशल होना बड़ा जरूरी है, सोशलाइज करना बड़ा जरूरी है। हत्ता के जब बच्चों को गंदे माहौल से बचाने की बात करते हैं, स्कूल के कॉलेज के माहौल से, कॉलेज को तो खैर लड़कों को जरूरत होती है कमाने की खातिर, लेकिन स्कूल के गंदे माहौल से बचाने की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्या एतराज आता है, बच्चे हमारे सोशलाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर बड़ी तफसील है भाई, कौन सी सोशलाइजेशन, कैसी सोशलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो हमने सोशलाइज करने को, सोशलाइज करने का मतलब गप्पे मारना, दोस्तियां बनाना, लोगों के साथ वक्त गुजारना, ठीक है ना, इसको हमने फर्ज और वाजिब से भी बढ़ करके किसी कोई लेवल पे, ईमान के लेवल पे ले गए हैं, जैसा कि हम सोशलाइज करने को। याद रखें, जो इंसानों की दुम में लग करके राहत पाता है ना, इंसानों की जान को चिमट करके राहत पाता है ना, वो अपने आप को उस अजाब के लिए तैयार कर ले, कि जिस दिन जिन इंसानों उसको उससे उसको राहत मिलती थी, वो या तो मर जाएंगे, वो या तो मर जाएंगे, या वो इससे दूर भाग जाएंगे और ये तन्हा रह जाएगा, ठीक है ना, ये तन्हा रह जाएगी। कितना कितनी देर तक आपके साथी, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, राइट, कितने दिन जिंदा रहेंगे, वो मर जाएंगे भाई, राइट, या तो आप मर जाएंगे तो फिर कहाँ पे जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कब्र में जाएंगे, कब्र के अंदर सोशलाइजेशन के लिए जो है वो चीजें मौजूद हैं, कब्र में सोशलाइजेशन के आपके असबाब मौजूद हैं, है? या तो आप मर जाएंगे कब्र में, वही तन्हाई, या आप अगर नहीं भी मरेंगे तो बाकी लोग मर जाएंगे, और जो मर नहीं जाएंगे तो भाई वो भी इस हालत को पहुंच जाएंगे कि अब वो आपसे बात नहीं कर सकते, अब वो आपको कंपनी नहीं दे सकते, जैसे आपके बराबर के दोस्त अहबाब, वो भी तो बूढ़े हो जाएंगे ना, वो भी तो अब इस काबिल नहीं रहेंगे ना, राइट। और जो आपकी औलादे हैं, अब वो आपकी पोजिशन पे पहुंच चुके हैं जिस पोजिशन पर आप थे चंद सालों पहले, अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अब उन्होंने काम काज करना है, अब उन्होंने कमाना है, अब उन्होंने औलाद की तरबियत करनी है, अब उन्होंने अपनी औलाद की तालीम का इंतजाम करना है, वो कहां से आपको कंपनी देंगे उसके बाद? अब जो है ना, अल्लाह का अजाब शुरू हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो कि अल्लाह को छोड़ करके मखलूक की, हमारे यहां ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, दुम में लगे रहते हैं, मखलूक के दुम में लगे रहते हैं हर वक्त, हर वक्त किसी से बात, हर वक्त किसी से चैट, हर वक्त किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, हर वक्त किसी के साथ जो है ना वो गप्पे मारना, अजाब के लिए अपने आप को तैयार कर ले। और ये इतना बुरा अजाब होता है, इतना बुरा अजाब होता है ना, दुनिया के अंदर ही मिलना शुरू हो जाता है, कब्र में जाएंगे तो वहां बाद में मिलेगा। ठीक है, अल्लाह को अपना बना लो, ये खाली गाने की नज़म नहीं है, ये खाली पढ़ने का कलाम नहीं है, ये हमारी जरूरत है, अल्लाह हमारी जरूरत है, और अगर नहीं बनाओगे बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। ठीक है ना, ये जो दीन का एक खलवाड़ हमने बनाया हुआ है ना, जिसके अंदर सब कुछ है अल्लाह के अलावा, सारे जो है वो रिवायात हैं, सारी जो है वो जो आमाल हैं उसके अंदर, लेकिन अल्लाह नहीं है उसके अंदर, अल्लाह का ताल्लुक नहीं है, ये दीन उस दिन फिर छूट जाएगा, सारा का सारा दीन, सारे आमाल छूट जाएंगे उसके बाद, उस वक्त पर। ठीक है ना, और तन्हाई का अजाब होगा फिर उसके बाद, तन्हाई का अजाब होगा। सही है, तो ये इमोशनल नीड के लव्स को समझें। ठीक है ना, तो किस वाली तकलीफ की बात हो रही है? जिस्मानी तकलीफ की बात हो रही है, औलाद के अगर जाने की वजह से, कमाई के लिए जाने की वजह से मां बाप को जिस्मानी तकलीफ होती है, दिस इज औलाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस्मानी तकलीफ का ख्याल रखे अपनी माँ बाप के लिए। ठीक है, चले क्लास वैसे खत्म भी करनी थी, और आप लोगों के मैसेजेस भी आए हुए हैं, और कोई डॉक्टर्स की टीम भी आने वाली है, तो आप ये दो चार मैसेजेस पढ़ लेते हैं कि अपने पास जो भी, एक मिनट है, इनको इनकी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, बड़ा अच्छा आपने लिखा। आजकल कौन सी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं? सोशल मीडिया, ठीक है ना, तो फेसबुक पे इंगेज कर दो उनको, यूट्यूब की वीडियोस के अंदर, टिकटॉक की वीडियोस के अंदर उनको इंगेज कर दो, हैं, या बिलियर्ड खेलने में उनको इंगेज कर दो। कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा दीन सीखा है ना आपने, आप तो माशाल्लाह, बस क्या बोलूँगा आपको, उनकी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना है, तो उसके लिए जो है वो आप क्या करेंगे, हेल्प हायर करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है ना, वो जिनको आप, जैसे कि जापान के अंदर है ना वो फोन सर्विस होती है बूढ़ों के लिए, है ना, फोन करते हैं और आगे जो है ना वो उनको एंटरटेन करने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, और उसके ऊपर वो चार्ज लेते हैं आपसे, बूढ़ों से वो पैसे चार्ज करते हैं। ये हमारा दीन सिखाता है, ये हमने दीन सीखा है, राइट। इंटरेस्ट की एक्टिविटीज में एंगेज रखना, अल्लाह तो है ही नहीं इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी, कुरान तो है ही नहीं इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी ना, राइट, इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज में एंगेज रखना। यू शुड थिंक व्हाट यू आर सेइंग, अपने पास जो भी दिक्कत हो, हर ऐसी बात बात उनके उनसे मोहब्बत से बता के, और हर बुरी चीज को हमें नहीं पसंद आ रही उन्हें भी मोहब्बत के अंदाज से उन्हें समझा कर। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, उसने जब ये बातें नहीं समझी होती है ना अपनी जवानी के अंदर, सारी जिंदगी नहीं समझी होती, आप हैव यू एवर डेल्ट विद समवन लाइक दैट, ऐसा नहीं होता फिर उसके बाद, अब आप नहीं समझा सकते, समझाना का दरवाजा बंद हो चुका होता है उस वक्त। कोशिश बेशक करते रहें अगर आप कर सकते हैं, लेकिन समझाने का दरवाजा बंद हो चुका होता है उस वक्त। ठीक है, उनको ऐसे सोर्स से जोड़ना जो शरीयत के भी मुताबिक हो, और वो उसमें उनका वक्त इसमें स्पेंड हो जाए। बच्चों को जोड़ना होता है, बड़ों को नहीं जोड़ना होता, बड़े आपके बड़े होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, है ना, बच्चों को तो समझाया नहीं कभी, बच्चों की तो तरबियत और तालीम हम करते नहीं है, बड़ों की तालीम और तरबियत करेंगे। ठीक है ना, तो उनकी तो तालीम और तरबियत उनके बड़ों ने करनी थी ना, या उन्होंने खुद करनी थी। ठीक है, अब छोटे नहीं कर सकते ये वाले काम बड़ों के साथ, उनको नेकी में लगा देना, उनको जो है वो शरीयत दीन पढ़ा देना, कुछ सही कहा आपने, जो इबादत में बिजी रहे उसको ओल्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं हमेशा सोचती थी कि ओल्ड लोग को कैसे डील करेंगे, अपने आप को डील करें, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ें, सिर्फ इबादत में नहीं, ऐसी इबादत ना किया करें जिसमें अल्लाह ना हो, जिसमें अल्लाह का ताल्लुक ना हो, इश्क ना हो तो शराउद्दीन बुत कदाए तसव्वुरात। इस अल्लामा इकबाल के शेर को समझें, इश्क अगर नहीं है ना, इश्क से क्या मुराद? अल्लाह से शिद्दत वाली मोहब्बत, इश्क से मुराद होता है अल्लाह का ताल्लुक। अगर अल्लाह का ताल्लुक नहीं है तो आपकी शरीयत और आपका दीन ये बुत कदा है। बुत कदा यानी ऐसी जगह जिसके अंदर बुत रखे हुए होते हैं, ठीक है ना, जो कि बच्चों को हम समझा रहे थे, टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी जगह होती है वो। तो शराउद्दीन जो है ना, वो टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी चीज बन जाती है अगर अल्लाह का ताल्लुक ना हो उसके अंदर। ये अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं। अच्छा, और क्या लिखा? ये सोशलाइज करने का जो शौक होता है इसको कैसे कम करें? सोशलाइज करने का जो शौक होता है ना, उसको कैसे कम करें? अभी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सुने, ठीक है ना, आखिरी वाले जो 15 मिनट हैं उसकी रिकॉर्डिंग सुने। अल्लाह कम करवाएगा आपके शौक को, क्योंकि जब खौफ आएगा ना आपके अंदर, खौफ कि सोशलाइजेशन कितना बड़ा यानी अजाब को दावत देना है, ठीक है ना, जब खौफ आएगा ना तो ये शौक खुद कम हो जाएगा सोशलाइज करने का, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अल्लाह ये सोशलाइज करने की कीड़े को मेरे अंदर से निकाल दीजिए, ठीक है। वालदैन कहते हैं कि अब तुम हमें समझाओगे, कल के बच्चे हो। एग्जैक्टली, ऐसे ही होते हैं। तो आप वालदैन को नहीं पट्टी, आप वालदैन को नहीं समझा सकते, आप वालदैन को दीन ही पढ़ा सकते, ठीक है। बल्कि होता क्या है, अगर आप उनको दीन पढ़ाएं ना तो फिर वो उसमें से वो चीज पिक करेंगे जो उनके उनके हुकूक बनते हैं, है ना। वो भी आजकल के वालदैन भी बड़े पढ़े लिखे दीनदार हैं। आप खाली आप अकेले अपने आप को समझते हैं कि आप दीनदार बन गई हैं, नहीं, वालदैन भी साथ साथ आपके दीनदार बने। उनको भी सब पता है कि उनके क्या क्या हुकूक हैं, कौन कौन सी हदीसें जो है ना, वो मौलाना तारिक जमील साहब का लेक्चर जो है वो सभी सुनते हैं ना, मौलाना तारिक जमील को तो सभी सुनते हैं। उसके अंदर वालदैन के हुकूक वाले लेक्चर सुने कभी? नहीं? वो सुने आपने तो नहीं सुने होंगे, आपके अम्मा आप बने जरूर सुने होंगे वो वाले लेक्चर्स, ठीक है ना। और फिर वो उनको अच्छी तरीके से याद रहते हैं, और फिर वो आपको तोलते भी हैं उनके ऊपर कि हाँ तुम क्या, तुम तो जहन्नुमी हो, तुमने तो वालदैन के हुकूक अदा नहीं किए हैं, ठीक है। बात को समझें, तारा बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।